हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए समर वहीं रुक गया। उसने एक आंख बंद कर हाथ से चेहरा छुपाते हुए कहा, ओह सॉरी, मेरा ही वेट कर रहे थे क्या? लेट हो गया ना मुझे? आई एम रियली सॉरी भाई, बट वो... करण ने सख्त नज़रों से उसकी ओर देखते हुए पूछा, कोई सॉरी वॉरी नहीं, पहले ये बताओ कि कहाँ थे, किसके साथ थे और वो कार किसकी थी जो तुम्हें इस गली तक ड्रॉप करके गई है? और इतने खुश भी लग रहे हो समर, क्या बात है? ये बात सुनते ही समर एकदम सीधा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और वो कार, हाँ वो ऋषभ की थी, भाभी का भाई ऋषभ मल्होत्रा, वो उसके साथ ही था मैं। एक्चुअली उसे मुझसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी थी और उसी में लेट हो गया। फिर उसने कहा कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देता है। मैंने मना भी किया था भाई, बट वो... करण ने सख्त नज़रों से उसकी ओर देखते हुए पूछा, कोई सॉरी वॉरी नहीं, पहले ये बताओ कि कहाँ थे, किसके साथ थे और वो कार किसकी थी जो तुम्हें इस गली तक ड्रॉप करके गई है? और इतने खुश भी लग रहे हो समर, क्या बात है? ये बात सुनते ही समर एकदम सीधा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और वो कार, हाँ वो ऋषभ की थी, भाभी का भाई ऋषभ मल्होत्रा, वो उसके साथ ही था मैं। एक्चुअली उसे मुझसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी थी और उसी में लेट हो गया। फिर उसने कहा कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देता है। मैंने मना भी किया था भाई, बट वो... उसने इंसिस्ट किया तो... समर के ऋषभ के साथ होने की बात सुनकर करण को राहत मिली। उसने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुमने मुझे पूरी बात सच बता दी। बट अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ऋषभ कुछ अजीब लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? और मुझे लगता है शायद तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो। समर ने धीमी आवाज में कहा, हाँ शायद, या फिर दोस्त से कुछ ज़्यादा, मेरा मतलब है रिलेटिव भी तो है, ऐसा वो कहता है। और अजीब? अजीब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद वो थोड़ा सा अलग है हम सब से, ये मुझे भी फील हुआ, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है। उसकी बात समझते हुए करण बोला, हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और तुम सही, बस रहने दो ये सारी बातें। लेकिन अगर तुम घर आने में लेट हुआ करो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ मुझे कॉल या एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो किसी के भी नंबर से, और तुम्हारा फ़ोन शायद एक दो दिनों में वापस मिल जाएगा। ये बात सुनकर समर थोड़ा खुश हुआ। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अंदर से उनके पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई, बाहर ही खड़े रहोगे क्या तुम दोनों भाई? अंदर आकर भी बातें कर लेना, घर में बात करने पर मना नहीं है। घर के अंदर से आती आवाज़ सुनकर करण ने समर के कंधे और पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, चलो समर अंदर चलते हैं, बाकी की बातें डिटेल में बताना मुझे, लेकिन डिनर के बाद। इस बात पर समर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वे दोनों साथ ही घर के अंदर आ गए। अगले दिन एसके डिज़ाइनिंग हाउस के ऑफिस में। पिछली रात की पार्टी और क्लाइंट के साथ डिनर में शिविका काफ़ी देर हो गई थी। वो बस कुछ घंटों के लिए ही सो पाई थी क्योंकि अगले दिन सुबह उसे जल्दी ही ऑफिस आना था, इसलिए अपने केबिन में वो सिर पकड़े बैठी हुई थी। करण केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसने शिविका को इस तरह देखा। उसने पूछा, क्या हुआ, सर में दर्द है क्या? तुम कुछ ठीक भी नहीं लग रही हो देखने में। करण की आवाज़ सुनते ही शिविका ने सिर से हाथ हटाते हुए नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, अच्छा कैसे पता चल गया तुम्हें कि मैं ठीक नहीं हूँ? शिविका ने काफ़ी दिलचस्पी से ये सवाल पूछा क्योंकि करण के अलावा और कोई उसके भाव भंगिमा पर इतना ध्यान नहीं देता था। किसी ने भी बिना पूछे कभी खुद से ये नहीं कहा था कि वो ठीक नहीं लग रही है। उसके इस सवाल पर करण आगे आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शक्ल पर साफ ही तो नज़र आ रहा है, इतना कोई कठिन नहीं है ये पता लगाना। और वैसे बताओ क्या हुआ और इतना ओवरवर्क क्यों करती हो? शिविका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, ओवरवर्क कहाँ किया, जब से तुम मेरे असिस्टेंट बने हो मेरा काम तो वैसे ही आधा हो गया है, कल भी तुमने मुझे जल्दी घर भेज दिया था। करण ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ घर तो मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम्हारी ये लाल आंखें और पीला पड़ा चेहरा देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुमने प्रॉपर रेस्ट किया है। घर पर भी काम कर रही थी क्या या फिर कुछ और? काव्या ठीक है ना? शिविका ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए करण को बताया, हाँ काव्या तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन काव्या की मम्मा को सच में रेस्ट नहीं मिला। वो क्या है ना, कल रुद्र के साथ उसके एक नए होटल की ओपनिंग सेरेमनी पार्टी में चली गई थी, और फिर वहाँ पर वो साहिल भी मिल गया, और फिर उन सब में मुझे काफ़ी लेट हो गया घर वापस आने में। शिविका ने बिना किसी झिझक के उसे पूरी बात बता दी, लेकिन ये सब सुनते हुए करण का मुंह बन गया। शिविका पार्टी में रुद्र के साथ गई थी, और फिर उस साहिल का नाम सुनकर करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पिछली रात शिविका उन दोनों के साथ थी। रुद्र तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो शिविका का बेस्ट फ्रेंड है और करण उसे अभी इतना नहीं जानता, लेकिन वो साहिल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी उसने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा और बात को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, क्यों गई थी तो? मना नहीं कर सकती थी क्या? इतना जरूरी था तुम्हारी हेल्थ से भी ज्यादा। अब देखो कितनी स्ट्रेस्ड आउट लग रही हो, करण ने इस तरह से डांटते हुए कहा। शिविका को थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए सफाई दी, हाँ क्या करूं अब, कभी कभी ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, और वैसे भी मैं उसे पिछले 2-3 दिनों से मना ही रही थी, तो कल मना नहीं कर पाई, और मैंने सोचा था कि जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन फिर साहिल। इस बार करण ने सीधे अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, हाँ तो उसे मना कर देती, वो इतना कौन सा ज़रूरी था, और वैसे भी तुम जानती हो ना मुझे वो बिल्कुल पसंद। शिविका ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए काफ़ी आराम से बोली, रिलैक्स करण, पता है मुझे तुम साहिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल मुझे वो ठीक ठाक ही लगता है, और हमने बस साथ में डिनर किया, उसके बाद प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी बहुत बातें हुई, और उसी में काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे पता नहीं चल पाया, तो घर वापस आने के बाद भी मैं ज्यादा देर सो नहीं पाई, बस इसीलिए, बाकी आज ठीक से नींद मिलेगी तो ठीक हो जाऊंगी कल तक। शिविका ने बात को खत्म करने वाले अंदाज में कहा। करण का मुंह बन गया, क्योंकि उसे शिविका की ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर उन दोनों ने ही इस बारे में और बात नहीं की, जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, और फिर वे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। करण ने अपनी टीम का बनाया हुआ प्लान शिविका को लैपटॉप में ओपन करके दिखाया। शिविका काफी ध्यान से उसे देख रही थी कि तभी करण का मोबाइल फोन बज गया। उसके मोबाइल फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनकर शिविका ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, किसका कॉल है? कॉल रिसीव करने से पहले करण ने जवाब दिया, वो पुलिस इंस्पेक्टर जय का। शिविका ने कहा, अच्छा ठीक है रिसीव कर लो, ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसे। करण ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए फ़ोन कॉल रिसीव कर ली और थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगा। शिविका प्रोजेक्ट के फाइनल प्लान को चेकआउट कर रही थी, तभी उसने एक नज़र उठाकर करण की तरफ देखा, जो फ़ोन पर बात करते हुए थोड़ा सा परेशान दिख रहा था, और फिर 2-3 मिनट में ही उसकी बात खत्म हो गई। वो कुछ सोचता हुआ धीरे कदमों से चलता हुआ शिविका की तरफ आया। उसे इस तरह देखकर शिविका ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा तुम्हारे इंस्पेक्टर दोस्त ने? करण ने उसकी बात का जवाब देते हुए बताया, उसने मुझे बुलाया है वहाँ पुलिस स्टेशन, शायद कुछ सामान बरामद हुआ है उन बदमाशों के पास से, उसने समर और ऋषभ को भी लेकर आने को कहा है, लेकिन समर तो अभी कॉलेज में होगा और ऋषभ वो कहाँ होगा? शिविका ने सवाल किया, उन दोनों का भी जाना जरूरी है क्या, तुम अकेले नहीं जा सकते?
करण ने शिविका की बात का जवाब देते हुए पूछा, हाँ पहले उसने कहा था, फिर मैंने भी यही बात बोली तो उसने कहा, कोई बात नहीं मैं अकेले भी आ सकता हूँ, मुझे सिर्फ सामान पहचानना होगा। वैसे ऋषभ का मोबाइल कौन सी कंपनी का था? शिविका थोड़ा सा सोचते हुए बोली, पता नहीं, ये तो मुझे भी इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन तुम वॉलपेपर देख लेना, वहाँ R अल्फ़ाबेट होता है उसके वॉलपेपर, बैक कवर, हर जगह पर उसके नाम का पहला अक्षर। करण ने उसे परमिशन लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है तो फिर मैं जाऊं पुलिस स्टेशन, वहां से सीधे वापस ऑफिस ही आऊंगा। शिविका ने भी तुरंत ही हामी भर दी, हाँ ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, वैसे भी अभी ज्यादा काम नहीं है, होगा भी तो मैं देख लूंगी, और ये भी तो जरूरी है। शिविका की बात पर करण ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी शिविका को एकदम से कुछ याद आया और उसने पीछे से करण को आवाज लगाते हुए कहा, करण एक मिनट रुको। शिविका की आवाज सुनकर करण वहीं रुक गया और फिर उसने पीछे मुड़ते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ? शिविका काफी आराम से बोली, नहीं कुछ हुआ नहीं, बट वो नीचे कार होगी और ड्राइवर भी, तो तुम एक काम करो कार से चले जाओ, पुलिस स्टेशन जल्दी आ जाओगे। उसके इस ऑफर पर करण ने कुछ सोचकर मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बाइक से ही चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। शिविका ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, अरे धूप इतनी तेज है, बाइक से जाओगे तो फिर धूप लग जाएगी और फिर वापस आकर काम भी करना है, बस इसलिए बोल रही हूँ, चले जाओ ना कार से। करण ने अपने मन में चल रही बात शिविका को बताई, बट अगर मैं कार से जाऊंगा और किसी एम्प्लॉई ने देख लिया तो फिर सब यही बोलेंगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है और इसीलिए मैं तुम्हारी कार यूज़। शिविका अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उसकी तरफ आते हुए बोली, स्टॉप दिस नॉनसेंस करण, इतना मत सोचो और जिसको जो बोलना है बोलने दो। वैसे भी अगर कोई डायरेक्टली पूछे तो ये बता देना कि तुम ऑफिस के काम से ही कहीं जा रहे हो और इसीलिए तुमने मेरी कार यूज़ की, क्योंकि मैंने ही परमिशन दी है। उसकी बात समझते हुए करण बोला, यही तो प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली कोई कुछ भी नहीं पूछता। उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए शिविका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है सब में, सारे के सारे कायर होते हैं, बस पीठ पीछे बात करना ही आता है। डोंट वरी, तुम इतना मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शिविका की ये बात सुनकर करण का उस पर विश्वास करने का मन हुआ। मुस्कुराते हुए उसने हल्के से हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से सीधे पार्किंग एरिया में आ गया। जैसा कि शिविका ने कहा, पार्किंग एरिया में उसकी कार खड़ी थी और ड्राइवर भी कार के अंदर ही बैठा हुआ था। करण वहाँ आया और उसने ड्राइवर से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। ड्राइवर उन दोनों को ज्यादातर साथ आते जाते देखता था और कहीं ना कहीं उसे पता था उन दोनों के रिश्ते के बारे में, इसलिए उसने करण से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसे लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। क्रमशः